मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 13 जुलाई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज का दिन है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन अपन लोगों के लिए कुछ शेरो शायरी कविता कहां इस तरह का दिन हुआ करता है। तो आज डेफिनेटली मैं कविता के माध्यम से ही आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। मुझे याद है कि पिछले शुक्रवार को मैं ऐसा नहीं कर सका था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मित्रों, आज मैं आपको साहिर लुधियानवी साहब का एक गीत सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, सुनाने तो नहीं कहना चाहिए, मैं कोई गायक नहीं हूं। और आप देखिए कि उसमें किस तरीके से उन्होंने जो रचनाकार की एक पीड़ा होती है, मतलब हम किसी कोई गीत सुनते हैं या पढ़ते हैं, आप कह लीजिए, या सुनते हैं भी कह सकते हैं, किताबों में उसे पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो सामान्यतया हमें लगता है कि ठीक है, ये अच्छा उपन्यास है, अच्छी कहानी है, बेकार है, फालतू का है, हम उसे या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, फिल्मों के साथ भी है, मतलब जो भी कलात्मक कृति है, हम उसके अंदर समाये हुए जो रचनाकार का दर्द है उसे महसूस नहीं कर पाते, उसके संघर्ष को समझ नहीं पाते। देखिए, रचना में हो सकता है कि उल्लास और आनंद ही टपक रहा हो, मतलब रचना इतनी खूबसूरत है कि आपको मजा आ गया और उसमें तो सुख सुख की बात कही गई है, लेकिन उस सुख की बात को लिखने में रचनाकार ने कितनी पीड़ा बर्दाश्त की है, कितना दर्द झेला है, उसे हम नहीं समझ पाते। ऐसा लगता है कि यार ये रचनाकार तो खुद कितने आनंद में रहा होगा तभी तो ये आनंद की बात लिख पाया है। ऐसा नहीं है मित्रों, जो लेखन है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और यहां मैं खासकर लाइफ मैनेजमेंट के संदर्भ में संदेश यही देना चाह रहा हूं कि जीवन में जब भी कोई पीड़ा का दौर आए, संकट आए, दर्द मिले, तो आप उसकी अहमियत को समझिए, उसे यूं ही जाया मत जाने दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए। ये आपके जीवन की एक बहुत बड़ी थाती होगी, बहुत बड़ी धरोहर होगी, बहुत बड़ी पाठशाला होगी। मित्रों, साहिर लुधियानवी साहब, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपने भी नाम सुना होगा, जो हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायरों में हैं और खासकर प्रोग्रेसिव राइटर माने जाते हैं, प्रगतिशील शायरों में हैं, उन्होंने अपनी रचना के बारे में, देखिए शायरी के बारे में क्या कहा था। उन्होंने दो लाइनों में बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। मतलब मैं अपनी शायरी के माध्यम से कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मतलब इस दुनिया में रह करके जो मुझे तजुर्बे मिले, जो अनुभव हुए, जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई, कुछ नहीं, उन्हीं को मैं थोड़ा सा उनका रूप बदल करके, यानी कि शेरो शायरी के रूप में, उसी दुनिया को वापस कर रहा हूं जिसने मुझे ये सारी चीजें दी थी, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब आप देखिए कि वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि दुनिया ने मुझे सुख दिया, चैन दिया, वो भी दुनिया ने दिया। और लुधियानवी साहब ने ऐसे बड़े सौंदर्य प्रधान गीत भी लिखे हैं कि सुनकर के आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, लेकिन वो गीत भी जो निकले हैं, याद रखिए, वो पीड़ा से निकले हैं, वो दर्द से निकले हैं, भले ही वो लेखन की ही छटपटाहट क्यों ना हो। तो मित्रों, एक गीत है, उनकी 6 पंक्तियों का एक गीत है, उसे मैं पहले आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं अपनी थोड़ी सी बात कहूंगा इस संदर्भ में, फिर मैं चाहूंगा कि आप सब भी इसके बारे में सोचें, आपको सोचना ही चाहिए मित्रों, और कोशिश कीजिए कि 5-10 मिनट मेरे इस अनुनय विनय का पालन करने के लिए आप निकाल लें। देखिए वो क्या कह रहे हैं, यह गीत आपने सुना भी होगा, अगर आप पुराने गीतों को सुनने के शौकीन हैं तो शायद सुना होगा। अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, अशकों में जो पाया है, जो मुझे आंसुओं से मिला है, जो दर्द में मिला है, उसे गीतों में दिया है। अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, उस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है, उस पर भी जो दुनिया वाले हैं खुश नहीं है, वो लगातार शिकायत ही करते रहते हैं, आलोचना ही करते रहते हैं। अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, उस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। देखिए क्या खूबसूरत बात कर रहे हैं। हम सितार सुनते हैं, हम वीणा सुनते हैं, हम सरोद सुनते हैं, इस तरह के वाद्य यंत्र हम सुनते हैं जिनमें तार लगा होता है। तो तार से जो धुन निकल रही है, जो मधुर संगीत निकल रहा है, वो तो हम सबको सुनाई पड़ रहा है और हम उसका आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन उस तार के ऊपर जो घर्षण किया जा रहा है, जो रगड़ दी जा रही है, उसको तो वो तार बर्दाश्त कर रहा है ना, उस संघर्ष को तार बर्दाश्त कर रहा है, वो किस दिल को पता है। वो तो कोई दिल किसी को समझ ही नहीं पाता, जो सुनने वाले लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि तार पर क्या गुजर रही होगी। यहां जो तार की बात कह रहे हैं मित्रों, वो रचनाकार के दिल की ही बात है कि मैं भले ही सौंदर्य के गीत लिख रहा हूं, मैं खुशी के गीत लिख रहा हूं, लेकिन इस गीत को लिखने के दौरान मेरे दिल पर क्या गुजर रही है वो किसी को मालूम नहीं है। क्या खूबसूरत बात कही है, बल्कि ये लाइन आपको याद कर लेनी चाहिए और बीच बीच में कहीं जब बातचीत के दौरान आप इसको कोट कर सकते हैं कि जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो दिल किसको पता है, वो किस दिल को पता है। आखिरी दो पंक्तियां हैं, हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है। हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है। मतलब हम दूसरों में खुशी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है, दाग मिल रहा है। दाग का मतलब यहां बहुत सी चीजों से है मित्रों, आलोचना मिल रही है, बदनामी मिल रही है, झिड़कियां मिल रही हैं, और सबसे बड़ा तो है कि दर्द मिल रहा है। मतलब दर्द पी पी करके हम लोगों को खुश कर रहे हैं। और हमारे यहां इस रूप में भगवान शिव, देखिए शिव का मतलब होता है सुंदर, शिव का मतलब होता है कल्याण, दुनिया का कल्याण करने वाले ब्रह्म को हम शिव कहते हैं। लेकिन शिव ने क्या किया था, आपको पता है कि शिव ने विष पान किया था, विष पिया तब लोगों का कल्याण किया। और सच यह है कि लोगों का कल्याण करने के लिए ही तो उन्होंने विष पिया था। और कल्पना करके देखिए कि अगर समुद्र से निकला हुआ, समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था, अगर वह विष पूरे के पूरे धरती पर फैल गया होता तो जीवन नष्ट हो चुका होता, सब खत्म हो गए होते। तो सबको बचा सके, उनकी रक्षा कर सके, इसके लिए उन्होंने खुद विष का पान कर लिया, वो विषपाई बने ताकि दुनिया खुश रह सके, दुनिया सुरक्षित रह सके। यहां उसे ही वो अपने अंदाज में साहिर साहब कह रहे हैं कि हम फूल हैं औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के बस एक दाग मिला है। दोस्तों रचनाकार बहुत जबरदस्त संघर्ष से गुजरता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, हर समय दिमाग में उसके कुछ न कुछ घूमता रहता है। ये बात मैं आपसे सिर्फ इस लिहाज से भी कह रहा हूं, पहली बात तो मैंने आपसे कही कि जब भी दर्द पीड़ा संकट का कोई दौर आता है उसे आप अपने लिए एक वरदान या सीखने की घड़ी मान करके चलिए। दूसरी बात यह मित्रों की जो रचनाकार होता है उसके प्रति थोड़ी अपने अंदर संवेदना जागृत कीजिए। वो कलम घिस्सू नहीं कर रहा है, अगर सही रचना निकल रही तो वो बहुत जबरदस्त किस्म के संघर्ष के दौर से गुजरता है, जिसे उन्होंने कहा कि जो तार साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। जो साज पे गुजरी है, मैंने तार पे गुजरी है कहा है, इसको करेक्ट कर लीजिए, जो साज पे गुजरी है, पूरे के पूरे वाद्य यंत्र पे क्या गुजर रही है उसको हम नहीं जान पाते, आप लोग जाने। क्योंकि यदि आप जरा भी रचनाकार से संवेदना के स्तर पर जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो भी रचना देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, चाहे आप फिल्म देख रहे हो, चाहे आप कहानी पढ़ रहे हो, चाहे आप कविता सुन रहे हो, गीत सुन रहे हो ट्रांजिस्टर पर, अगर संवेदना से आप जुड़ गए, संवेदना के ब्रिज से आप कनेक्ट हो गए लिखने वाले से, तो आप देखेंगे कि उसकी अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। वही रचना आपको न केवल कितने गहरे अर्थ ही देती है, बल्कि सच पूछिए तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा अमूल्य बन जाती है, आपके आनंद को भी वो कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और सामान्यतया तो देखिए, हम कला साहित्य संस्कृति से सच पूछे तो ज्ञान के लिए या अर्थ के उद्घाटन के लिए किसी हमें नए नए अर्थ मिले, उससे हम सामान्य व्यक्ति तो जुड़ता नहीं है, वो तो आनंद के लिए जुड़ता है कि उसे मजा आना चाहिए। यार मजा आ रहा है इस गीत को देखने में, इस फिल्म को देखने में तो मजा आ गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप के सामने जो मैंने ये 6 पंक्तियां रखी हैं, इनको यदि आपने थोड़ा सा भी हृदयंगम कर लिया तो आप रचनाकार के प्रति अपने को संवेदनशील पाने लगेंगे, आपकी दृष्टि उसके प्रति बदल जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि संवेदनशील हुई, मान करके चलिए कि रचना आपके लिए कई गुना ज्यादा अर्थवान हो जाएगी और कई गुना ज्यादा आनंददायी भी। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज शुक्रवार है, तो आप सबसे अब 2 दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।